ओम शांति। हम सभी की अति स्नेही बाबा के अनमोल रतन हर्षित मुख चेहरे पर हमेशा रहता। यज्ञ की कारोबार बड़ी ईमानदारी से आप संभालते, ऐसी हमारी आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। आदरणीय दीदी 1975 में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ी, 1989 से राजस्थान विश्वविद्यालय से MBBS की डिग्री आपने प्राप्त की, उदयपुर, कोटा, डूंगरपुर, इंदौर इत्यादि में आपने प्रैक्टिस भी की, लेकिन आध्यात्म में बचपन से ही रुचि होने के कारण उन्होंने 1991 से ग्लोबल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देना माउंट आबू में प्रारंभ किया। आपने वहां 2000 तक सेवाएं दी, उसके पश्चात ब्रह्मा कुमारी हेडक्वार्टर में अपनी मानद सेवाएं देने के लिए आप समर्पित हो गए। दीदी जी बहुत अच्छी क्लासेस कराते हैं, VIP के शिविर कराते हैं, ब्राह्मणों में उमंग उत्साह भरने के भी क्लासेस कराते हैं, जैसे मन प्रबंधन, तनाव प्रबंधन, खुशहाल जीवन, सकारात्मक सोच, आत्म सशक्तिकरण, ऐसे विषय पर भी आप व्याख्यान अपना देती हैं। और आप महिला विंग के माउंट आबू कोऑर्डिनेटर हैं, आज हमारे बीच लेकर आए हैं साधना जितनी की उतना फल मिलेगा। हम साधक तो हैं और साधना कर भी रहे हैं, लेकिन अपने आप से जो संतुष्टि होनी चाहिए वो संतुष्टि है? आज मिल पाया नहीं तो कल मिलेगा, व्यर्थ ही चिंतित, अटल विश्वास रखतु, साधना से साध्य का संबल मिलेगा, साधना से साध्य का संबल मिलेगा। तो आज हमारी दीदी जी स्पष्ट करेंगी कि पावरफुल अमृत वेला कैसे किया जाए, क्योंकि अमृत वेला ही हमारी सारी दिनचर्या पर डिपेंड करता है। अमृत वेले अगर हमने शक्ति भरी तो सारा दिन हम अपनी एनर्जी से कार्य करते हैं। तो आज हमारी दीदी स्पष्ट करेंगी और पुनः उनका तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है।
ओम शांति, ओम शांति। और अभी सब मुस्कुराते हुए बोलेंगे ओम शांति। हम सभी बाबा के ब्रह्मामुख वंशावली ब्राह्मण हैं, और ब्राह्मण माना ही ब्राह्मणों की विशेषताएं क्या होती हैं? ब्राह्मणों की 5 विशेषताएं होती हैं। इस दुनिया में भी जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण कुल के होते हैं, उनकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं। हम तो सच्चे ब्राह्मण हैं, यानी जन्म से नहीं लेकिन कर्म से बाबा ने हमें ब्राह्मण बनाया। तो एक तो वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, दूसरा ब्रह्मा भोजन खाते हैं। ब्रह्मा भोजन माना भगवान को भोग लगाया हुआ भोजन, भगवान की याद में बनाया हुआ भोजन। तीसरा वो ब्रह्म लोक को याद करते हैं। हम सब कहाँ के रहने वाले हैं? ब्रह्म लोक के रहने वाले हैं। और चौथा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और पांचवा ब्रह्मा मुख के द्वारा सुनाया हुआ ज्ञान सुनते हैं। तो सबसे पहला है ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और परमात्मा का स्मरण करते हैं। तो हम सभी बाबा के वो पद्मा पदम भाग्यवान बच्चे हैं। अभी सुना ना, पद्मा पदम भाग्यवान कैसे हैं, तो हमें बाबा ने ये जो श्रेष्ठ वेला दी है, ये पूरा संगम युग ही हम कहेंगे हमारे लिए वैसे तो अमृत वेला है, लेकिन हर दिन की भी अमृत वेला है। इस सृष्टि के हिसाब से पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। ये कौन सा समय है जब शिव बाबा इस धरती पर आते हैं? दिन कब होता है? जब सतयुग होता है, तब उसको ब्रह्मा का दिन कहा। तो दिन होने से पहले कौन सा समय है? अमृत वेले का समय। तो संगम युग का समय इस सृष्टि का अमृत वेला है, क्योंकि कलयुग रात है। कलयुग को हम रात कहते हैं ना, तो रात और दिन के बीच का जो संगम का समय है, जैसे अगर हम वैसे दिन की बात करें तो वो संध्या होती है रात होने से पहले, और दिन होने से पहले वो है अमृत वेला या ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो संगम युग इस हिसाब से अमृत वेला है, लेकिन हर रोज का भी जो अमृत वेला है, इसका भी हर धर्म में भी महत्व है। हमारे ब्राह्मण जीवन में तो ये सबसे विशेष समय है, लेकिन जैसे सिख धर्म में भी अमृत वेला मानते हैं कि सुबह सुबह उठ करके जो गुरु ग्रंथ साहब है उसका पाठ करते हैं गुरुद्वारे में, ऐसे ही मुस्लिम जो हैं वो सुबह सुबह अजान करते हैं। जो अमृत वेले उठते हैं उनको पता है आसपास कहीं मस्जिद होगी तो उसकी अजान शुरू हो जाती है। और ऐसे ही जो भक्त हैं हिंदू धर्म में भी, जो सच्चे भक्त होते हैं, आज के भक्त नहीं, कलयुगी भक्त नहीं, जो सच्चे भक्त होते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर भगवान का ध्यान करते हैं। जो पुजारी होते हैं मंदिर के, वो सुबह सुबह खुद भी उठते हैं और भगवान को भी उठाते हैं। और यहाँ कौन उठाता है? कौन उठाता है हमको? शिव बाबा खुद, जो इस विश्व का रचयिता है, वो स्वयं हमें, जो प्रकृति का मालिक है, वो हमें सवेरे खुद उठाते हैं। तो हम बाबा के वो बालक सो मालिक बच्चे हैं। तो हम अमृत वेला तो सब करते हैं। जो भी बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं, जिन्हें भी अमृत वेले का महत्व है, वो जरूर अमृत वेला उठते हैं। लेकिन हम उसे किस तरह करते हैं? एक होता है हमारा नियम है, नियम निभाना है, उठ गए, उठ के बैठ भी गए, अब कैसे चिंतन चल रहा है, योग लग रहा है, नहीं लग रहा है, नींद आ रही है, आधा सो लिया, आधा योग कर लिया, ऐसा योग करते हैं, या पावरफुल अमृत वेला करते हैं। तो पावरफुल अमृत वेला हो हमारा, बाबा से हमारा एकाग्रता वाला कनेक्शन, बाबा से हम महसूस करें कि लगन हमारी लग गई, बाबा के सिवाय और कहीं हमारा ध्यान नहीं जा रहा। तो पहले तो अमृत वेले का महत्व, क्योंकि जिस चीज का हमें महत्व होता है उसको हम वेस्ट नहीं करते हैं, तो महत्व हो हमें उसका। और फिर सारी विधि बाबा ने जो हमें बताई है, उस विधि पूर्वक हम अमृत वेला करें, तो फिर पावरफुल अमृत वेला होगा। उसमें जो भी माया विघ्न डालती है, जो भी विघ्न है वो माया के द्वारा ही आते हैं, तो माया जो विघ्न डालती है उन विघ्नों को भी हम अटेंशन रख करके समाधान करें, उन्हें दूर करें। तो सबसे पहले तो बाबा कहते हैं कि ये अमृत वेला विशेष बच्चों का समय है। बाबा ने ये समय बच्चों के लिए रखा है। तो सुबह सुबह हम उठते ही किससे गुड मॉर्निंग करते हैं? बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं। तो सुबह सुबह उठते ही हमने बाबा से मिलन मनाया, यानी बाबा का हमने मुख देखा, दुनिया में भी आपने सबसे पहले किसका मुख देखा उसका महत्व होता है। सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, जो आज ऐसा हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं होता ना, तो सोचते हैं किसका चेहरा देखा था। तो हम किसका चेहरा देखते हैं सुबह सुबह उठते ही? स्वयं भगवान का चेहरा हम देखते हैं, उससे हम मिलन मनाते हैं। तो हमारे दिन की शुरुआत ही कितनी शुभ होती है। तो बाबा से हम मिलन मना रहे हैं, स्वयं भगवान से मिलन मना रहे हैं, जो वरदानी समय है बाबा के बच्चों के लिए। बाबा भोले नाथ के रूप में है, भोले भगवान के रूप में है। तो बाबा कहते हैं सारे भंडारे खुले होते हैं उस समय, आप जितना लेना चाहो। कहते हैं ना, समुन्द्र में बहुत कुछ है, बहुत है, लेकिन हम कितना ले सकते हैं? मुझे एक लोटा भरना है या एक गागर भरनी है, कितना हमारी क्षमता है उतना हम वहां से लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा हमारे लिए सब भंडार खोल देते हैं, लेकिन हम बाबा से कितना ले सकते हैं? बाबा कहते हैं आप उस समय कोई बंदिश नहीं है, जो मन इच्छित फल आप पाना चाहें अमृत वेले, जो बाबा से अनुभव करना चाहें, जो शक्ति प्राप्त करना चाहें, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहे, माना कोई विशेष सफलता हम चाहते हैं ना, भगवान को अगर हम मनाना भी चाहते हैं कोई अपनी बात के लिए, वो सब हम उस समय बाबा से कर सकते हैं। तो जो हमारा समय है, हमारा समय शुरू होता है 2 बजे से, 2 से 5 बजे तक का समय है वो अमृत वेले का समय है। और फिर बाद में भक्तों का समय शुरू हो जाता है, 5 बजे के बाद बाबा फिर भक्तों में बिजी हो जाते हैं। तो अगर हमने अपना समय मिस कर दिया और भक्तों वाले समय में उठ करके हम योग लगा रहे हैं, तो फिर बच्चों वाली प्राप्ति नहीं होगी। जो अधिकारी हम महसूस करते हैं, बच्चे माना अधिकारी, बालक सो मालिक, और भक्त क्या है? भक्त तो मांगने वाले होते हैं। तो फिर हम भी उसी लाइन में आ जाएंगे और उतनी ही प्राप्ति हमें होगी जितनी की भक्तों को होती है। और बाबा कहते हैं अगर भक्तों के टाइम पर हम उठते हैं, तो फिर सतयुग में भी आने वाला जो हमारा जन्म का समय है वो भी देरी से होगा। देरी से उठ रहे हैं ना, तो देरी से उठने वाले जो अमृत वेला नहीं करते हैं, देरी से उठते हैं, तो उनके सतयुग में भी उतना ही पीछे जन्म होगा। अगर हम आदि समय से आना चाहते हैं, सतयुग के आदि से आना चाहते हैं, तो फिर हमारा जो आदि काल है, अमृत वेला है, वो उस समय ही हम अमृत वेला करें। तो जरूरी नहीं है कि 2 बजे ही उठकर हमें अमृत वेला करना है, लेकिन जो हमारा निश्चित समय है, 3:30 बजे हम उठते हैं और फ्रेश होकर के 4 बजे तक हम योग में बैठते हैं, 4:15 बजे जो भी हमारा ये समय है अमृत वेले का। क्योंकि अगर हम बहुत अपनी नींद का त्याग करते हैं, फिर सारे दिन हमें अपने अनेक जो भी कर्तव्य हैं, जो भी अपना नौकरी है या घर गृहस्थी है, वो सब कार्य करने हैं, तो फिर हम फिर उतना फ्रेश नहीं रह पाते। तो इसीलिए अपने शरीर की प्रकृति के हिसाब से ही हमें अपने आप को सेट रखना होता है। अब कभी कभी कर लिया, जैसे आज आपके लिए कहा गया कि रात को 2 बजे से यहाँ योग है, तो कोई दिन अगर हम उठकर भट्टी करते हैं और यहाँ तो हम आए ही पुरुषार्थ के लक्ष्य से हैं, सारा दिन यहाँ हमें कोई काम करना नहीं है, सिर्फ ज्ञान और योग ही यहाँ पर हमारी दिनचर्या है, तो ठीक है कि हमने कभी भट्टी के समय 2 बजे से उठकर के योग किया, लेकिन रेगुलर में हमारा जो समय निश्चित है अमृत वेले का, वो समय ही हमें उठना है। और अमृत वेले जब हम उठते हैं, तो हमारे शरीर की एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनी हुई है। अगर हम विज्ञान की रीति से भी देखते हैं, तो हमारी जो सर्केडियन रिदम होती है वो मॉर्निंग के समय में हमारे शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं, अगर हम अमृत वेले उठ गए तो वो बैलेंस होते हैं। ज्यादातर हार्मोन्स 4 बजे के समय निकलते हैं, और वो समय अगर हम आनंद की स्थिति का अनुभव करते हैं, योग करना माना शांति आनंद सुख का अनुभव करना, तो अगर वो अनुभव हमने उस समय किया तो हमारे ये सारे हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। और हार्मोन्स का संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ होता है, तो मन तो स्वस्थ होता ही है लेकिन उसका तन के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर होता है। तो अमृत वेला बाबा से जो हमारा आदि काल है वो पूरे दिन का फाउंडेशन है। अगर हमारा ये फाउंडेशन ठीक है तो पूरा दिन ठीक होगा। अमृत वेले अगर हमने शक्ति भर ली तो सारे दिन में फिर माया से हम हार नहीं खाएंगे। बाबा के वो वरदान हमें सहज ही सहयोग का अनुभव कराते रहेंगे। तो हम पावरफुल अमृत वेला करना तो चाहते हैं। हम सबका लक्ष्य क्या होता है कि अमृत वेले योग में बैठे तो बाबा के साथ वो पावरफुल हमारा योग लगे, अनुभव हो। लेकिन यहाँ तो ठीक है, मधुबन में आए हैं, संगठन का सहयोग है, वातावरण का सहयोग है, उठ भी जाते हैं, हॉल में आकर के योग करते हैं, मुश्किल नहीं होती है। मुश्किल कहाँ होती है, यहाँ तो बहुत अच्छा अनुभव होता है। आप सभी आए थे आज अमृत वेले, जो आए थे वो हाथ उठाइए। अच्छा, मेजॉरिटी आए थे, लेकिन कुछ 25% हैं जो नहीं हाथ उठा रहे। तो लक्ष्य रखना है कि जब हम मधुबन में हैं तो हमारा अमृत वेला बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें ये लॉटरी दी है और इसको अभी हम नहीं लेंगे तो फिर कब। लेकिन जब अपने घरों में होते हैं, बहने तो चलो सेंटर पर होती हैं, लेकिन
तुम्हें आना है।
तो अपने स्थानों पर रहते हुए भी हम पावरफुल अमृत वेला कर पाए, तो उसके लिए फिर हमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा, अटेंशन देना होगा। एक तो हमारी दिनचर्या का असर हमारे अमृत वेले पर आता है, रात को हम किस तरह सोते हैं और सुबह फिर कैसे उठते हैं। तो रात को सोते समय अगर हमने सारे दिन भर की चिंताएं करना शुरू कर दिया, बाबा के श्रीमत है रात को सोने से पहले छाट देना है बाबा को, अपनी बुद्धि को हल्का करना है, अगर कोई बात हो गई, कोई चिंता बोझ फिकर कुछ भी है तो बाबा को हम दे दें। कोई श्रीमत का उल्लंघन हो गया तो माफी, जो बाबा कहता है ना कि हम बाबा को अगर सच सच सुना करके उसकी क्षमा ले लेते हैं, या किसी दूसरे ने गलती कर दी उसको हमने माफ कर दिया, तो हमारा मन खाली हो जाता है। और नहीं तो फिर चिंता में अगर हम रहेंगे तो नींद ही नहीं आती कई बार, तो देर रात हो जाती है सोने में। कई लोग वैसे भी देर रात, आजकल मीडिया का जमाना है तो सारा दिन तो टाइम नहीं मिलता, बिजी होते हैं, रात को फोन पकड़ते हैं और फिर जो भी मैसेजेस हैं और जो भी मतलब उनको मोबाइल पर देखना करना जो शौक है वो अपने पूरे करते करते 11 12 कब बज गए पता ही नहीं चला। अब देर रात सोएंगे तो क्या होने वाला है? कहते हैं ना, जिस समय योगी सोते हैं भोगी जागते हैं, और जिस समय योगी जागते हैं भोगी सोते हैं। तो आज यही है ना, लेट टू बेड लेट टू राइज। अगर हम भोगियों की जिंदगी देखें तो कैसी है, देर रात सोते हैं और देर सुबह उठते हैं। सूर्यास्त तो कई बच्चों ने, आज की पीढ़ी के कई बच्चों ने सूर्यास्त देखा ही नहीं होगा, जमाना ही अब जो लाइफस्टाइल है जीवन शैली है वो इस तरह की है। तो अगर हम भी उसके प्रभाव में आ गए और हम भी देर रात सो रहे हैं, 11 बजे के बाद सो रहे हैं, 12 बजे तक सो रहे हैं, और फिर सुबह चलो उठ तो गए, पर अमृत वेले का महत्व है, उठ तो गए लेकिन अब बुद्धि तो थकी हुई है तो योग लगेगा। जो रात को देखा है वो चिंतन चलता रहेगा, फिर फ्रेश नहीं होंगे, बुद्धि फ्रेश नहीं है तो बाबा के साथ कनेक्शन होगा ही नहीं। कनेक्शन लगाने की कोशिश करते रहेंगे लेकिन कनेक्शन होगा ही नहीं, और योग का टाइम पूरा हो गया। फिर मजबूरी से टाइम पास करते हैं कि कब टाइम पूरा हो और कब योग पूरा हो जाए। तो ऐसा योग नहीं करना है हमको। कभी कभार कोई स्थिति बनी, कोई कारण बना, देर रात हो गए, तो बाबा की याद में, बाबा की याद की गोदी में हमें सोना है। तो बाबा ने कहा जब हम इस विधि से सोते हैं तो रात को बुरे सपने भी नहीं आते हैं। नहीं तो कईयों को रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, वो सपनों से भी हम मुक्त हो जाते हैं। तो रात के समय कोई भी आपस में इधर उधर की बातें भी नहीं करनी है। ज्यादातर हम परिवार वाले रात के टाइम मिलते हैं सब, फिर अगर कोई इधर उधर के समाचार की लेन देन शुरू हो गई तो वो बातें करते करते कितना टाइम हो गया पता नहीं चलता है। तो रात को व्यर्थ बातों में भी नहीं जाना है। हमारी श्रीमत के अनुसार अगर हम सोते हैं तो फिर सुबह हम फ्रेश उठते हैं और अमृत वेला पावरफुल अनुभव करते हैं। कई बार सुबह नींद खुली, बिस्तर पर हैं, अलार्म लगा कर रखते हैं या बाबा को बोल के सोए तो बाबा भी उठाता है। हाँ, किसको लगता है बाबा उठाता है हमको, देखो कितने हैं। तो बाबा भी हमें सोने नहीं देते क्योंकि बाबा को भी पता है बच्चों के वरदान लेने का समय है। तो बाबा ने उठाया, लेकिन माया कैसे काम करती है, आपको याद आएगा रात को देर से सोए थे, थके हुए थे, कुछ काम खास किया होता है पहले दिन तो फिर बुद्धि चलती है, अरे थके हुए थे रात को, नींद नहीं आ रही थी, देर से सोए, अभी 10 मिनट सो जाते हैं, अभी तो 3:30 बजे है ना, 10 मिनट सो जाते हैं, और 10 मिनट सोए, कब नींद खुलेगी? 5 बजे पूरा अमृत वेला निद्रा योग हो गया। फिर कई सोचते हैं अभी बिस्तर पे ही कर लेते हैं, बाबा कहता है ना लेटे लेटे भी योग कर सकते हैं, अब कौन उठ के जाए, चलो यहीं योग कर लेते हैं, वहीं बिस्तर पे बैठ गए टीका लगा के। अब जहां आप सोए हुए हो सारी रात के नींद के वाइब्रेशन है वहां पर, चलो 5 मिनट योग लग जाएगा और 5 मिनट के बाद फिर निद्रा लोक में, और फिर वही 5 बजेंगे और गर्दन और टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ा बैठे नींद में। ऐसे योग कर लेते हैं कई बार, तो इसीलिए कभी भी बिस्तर पर योग नहीं करना है, ये दृढ़ संकल्प रखो। बीमार है वो बात अलग है, लेकिन रात को, रात से ही आप प्लानिंग करो, रात से ही प्लानिंग करो कि मुझे बिस्तर पर नहीं बैठना है, सुबह उठकर अमृत वेले कहां बैठना है। और अगर आपके परिवार वाले ज्ञान में नहीं चलते तो इस तरह से उठकर बैठो जो किसी को भी डिस्टर्ब ना हो। नहीं तो अगर आपने लाइट जला दी, आपने कोई गीत बजा दिया या थोड़ी भी आवाज खटर पटर की, तो वो आपको 2-4 बातें सुना देंगे। किसी की भी नींद खराब होगी तो क्या होगा, सुना देगा ना, तो आपका अमृत वेला तो गया, क्योंकि आपने जो सुना वो ही चलने वाला है आपके दिमाग में कि अब इसने ये बोल दिया मेरे को ना। तो इसीलिए कोई डिस्टर्ब ना हो, पहले से ही रात को सेट कर लो कि मुझे यहाँ बैठना है सुबह अमृत वेले, और चुपचाप वहां शांति से बैठ गए। अगर लगता है कि मुझे नींद आ जाती है, सुस्ती आ जाती है, तो थोड़ा फ्रेश भी हो, पहले मुंह धो जा करके, ब्रश कर लो, कुछ पानी वानी पीने की इच्छा है तो पानी पियो और उसके बाद बैठो, और या नहीं तो कुछ पढ़ लेना चाहिए, एक पेज कुछ पढ़ लेते हैं। नहीं तो कैसे बैठते हैं, 10 मिनट बैठते हैं फिर शांति में परम धाम में चले गए। वैसे ही नींद से उठे हैं तो मन तो शांत होता है, और परम धाम में शांति में चले गए तो शांति में शांति, फिर परम शांति हो जाती है। फिर बड़े अच्छे अच्छे पोज बनाते हैं ना, बाबा कई बार हंसाते हैं इसको लेकर के, कि जैसे हठ योगी योग करते हैं ना, कभी इधर झूलते हैं कभी उधर झूलते हैं, फिर बाबा कहते हैं कईयों की तो म्यूजिक भी पहुंचती है वतन तक। अब म्यूजिक कौन सी होती है, खराटे की म्यूजिक, और कई लोग मुंह खोल के योग करते हैं, माना नींद भी करते परम धाम की तरफ मुंह खुला हुआ है, तो बाबा ऊपर से दिल खुश मिठाई खिलाने वाला है। तो ऐसे योग तो नहीं करते ना। अगर हो जाता है तो ध्यान देना है कि हम योग में बैठे सो ना जाएं, हमें नींद ना आ जाए, तो शांति में नहीं जाना है। लेकिन जो बाबा ने हमें चिंतन बताए हैं, जो स्मृतियां दी हैं, जो प्राप्तियों का अनुभव कराया है, जो भाग्य बाबा ने हमें दिए हैं, जो स्वमान बाबा ने हमें दिए हैं, उनकी अनुभूति में जाना है, उनकी प्राप्ति में जाना, प्राप्ति और अनुभूति। अगर ये दो अनुभव हम करेंगे तो हम खुशी में आ जाएंगे, और जब खुशी में होंगे तो नींद उड़ जाएगी, फिर नींद नहीं आएगी आपको ना। तो कईयों के लिए बहुत बड़ा विघ्न होता है अमृत वेले, उठ के बैठ जाते हैं लेकिन थोड़े समय में ही नींद आ जाती है। तो पूछते भी हैं कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन क्या करें। तो क्या चिंतन हमें करना है, पहले सबसे पहले उठते ही जब हम बैठे तो हम बाबा से गुड मॉर्निंग तो करते ही हैं, लेकिन फिर ये समझना है कि मैं परम धाम से आत्मा इस शरीर में अवतरित हुई हूँ, क्योंकि रात को हम सोए बाबा के पास परम धाम में, तो अब मैं परम धाम से आत्मा इस शरीर में आई हूँ। तो जो अवतरित आत्मा है वो ऊंची स्थिति से आई है, तो निश्चित है कि वो ऊंचा कार्य करने के लिए, श्रेष्ठ कार्य करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुई है। अपने अनादि स्वरूप को अनुभव करें, क्योंकि जो प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है उस समय में हम जो भी अपनी अव्यक्त स्थिति बनाना चाहें सहज बना सकते हैं। हमें प्रकृति का सहयोग है क्योंकि प्रकृति शांत है, प्रकृति का तमोगुण दबा हुआ है। जो भी आत्माएं हैं इस संसार की उनकी भी तमोगुण दबी हुई है, तमोगुणी वाइब्रेशंस नहीं है क्योंकि मेजोरिटी सोए हुए हैं तो वो भी दबा हुआ है, तो उस समय लाइन क्लियर होती है। पुराने जमाने में जब एसटीडी फोन हुआ करते थे ना, तो सवेरे के समय लोग फोन लगाते थे क्योंकि उस समय लाइन क्लियर मिलती थी, क्योंकि सारे सोए हुए होते थे तो लाइन एंगेज कम होती थी। तो यहां भी सुबह सुबह हमारी बाबा के साथ लाइन सहज क्लियर होती है और हम जो स्थिति, खास हमारी जो अनादि स्वरूप की स्थिति है वो बीज रूप स्थिति है। बीज रूप स्थिति परम धाम में यानी ब्रह्म लोक में, उस ब्रह्म स्वरूप बीज रूप स्थिति का अनुभव करना सबसे सहज होता है। अगर हम सारे दिन में अपनी निराकारी स्थिति को अनुभव करना चाहेंगे तो हमें मेहनत करके न्यारा करना पड़ता है अपने आप को, आवाजों से हम अपने को परे करें, देह और देह के संबंधों से न्यारा करें पहले। लेकिन अमृत वेले के समय तो हम पहले से ही मन जैसे देह से न्यारा है, क्योंकि रात को सोते ही आत्मा देह से न्यारी हो जाती है, तो हम देह से न्यारी स्थिति में वैसे ही होते हैं। और जो शांति का वातावरण है उससे परम धाम में मन को ले जाना हमारे लिए सहज होता है, आसपास की आवाजें भी इतनी ज्यादा नहीं होती हैं। तो इसीलिए बीज रूप स्थिति और फिर उसमें भी आत्मा के जो निजी गुण हैं, मेरे अनादि संस्कार, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप, मेरे संपूर्ण पवित्रता की जो परम धाम में स्थिति है उसका मैं अनुभव करूं। और फिर वो करते हुए बाबा से सर्व संबंधों के अनुभव में ले जाना है मन को, बाबा से सर्व संबंधों का प्यार जो हम अमृत वेले अनुभव कर सकते हैं और कर लिया अगर हमने, वो सर्व संबंधों के प्यार से हम भरपूर हो गए तो सारा दिन कोई भी देहधारी के प्यार का आकर्षण हमें नहीं होगा। ज्यादा तो माया इसी रूप में विघ्न डालती है ना, किसी के लगाव में आ जाते हैं, प्रभाव में आ जाते हैं, कोई ना कोई देहधारी आकर्षित करता है। तो बाबा का अगर हमने अमृत वेले अनुभव कर लिया तो दिन भर इस माया से हम मुक्त हो जाएंगे। तो बाबा को पिता के रूप में, मात पिता के रूप में वो हमारी रूहानी पालना कर रहे हैं वर्तमान में, तो हम ईश्वरीय पालना में ही पल रहे हैं। कहते हैं भक्त पालनहार है भगवान, लेकिन सचमुच वो कैसे पालना करता है वो तो हम अनुभव करते हैं। तो बाबा की पालना क्या है? बाबा हमें सुबह सुबह सभी गुणों का, शक्तियों का श्रृंगार कर देते हैं, सारे दिन के लिए हमें तैयार कर देते हैं। जैसे कहा कि अगर दिन की शुरुआत हमारी अच्छी है तो सारा दिन हमारा अच्छा ही होगा। जब हमारे अंदर वो शक्ति है तो फिर कोई भी परिस्थिति हमारे लिए परिस्थिति नहीं रहती है। शिक्षक के रूप में बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया उसका हम चिंतन करें, मनन करें कि बाबा ने मुझे क्या क्या ज्ञान के राज समझाए हैं, क्या क्या नए नए राज हमने समझे हैं, कैसे हमें दूसरों को भी वो ज्ञान देना चाहिए। तो जितना बुद्धि चिंतन में जाएगी नींद उड़ जाएगी। अगर हम एकदम शांति में बैठ जाएंगे तो क्या होगा? जो बताया कि 10 मिनट तो बैठेंगे और 10 मिनट के बाद फिर हम राजयोग नहीं कर रहे, निद्रा योग कर रहे हैं। तो कई बार नींद करने के बाद भी कई भाई बहने कहते हैं, बहन जी योग का अनुभव बहुत अच्छा था। क्या अच्छा था? बहुत शांति मिली, बहुत अतींद्रिय सुख का अनुभव हुआ। अब नींद में भी तो सुख मिलता है ना, कईयों को तो नींद ही सबसे ज्यादा सुख देने वाली होती है। तो यहां भी जब योग में नींद आ जाती है तो उसके जैसा सुख उनको, कौन सा सुख लेना है, ईश्वरीय सुख लेना है, नींद का सुख लेना है। नींद में तो कमाई नहीं हो रही है ना, चलो नींद में सुख तो मिला लेकिन कमाई तो नहीं की ना, तो ये तो हमारे कमाई का समय है। तो फिर जो हमारी कमाई है, जो जमा होना चाहिए, उनसे तो हम वंचित हो गए। बाबा कई बार कहते हैं कि जो नेमी नाथ होते हैं, नियम निभाने वाले, कैसे भी नियम तो निभा ही लेंगे, अमृत वेले तो उड़ ही जाएंगे, बैठ ही जाएंगे, उनके भी मार्क्स हैं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स नहीं है, कि अगर आप उठ के बैठे, इतनी मेहनत की आपने तो आपको तो भी कुछ नहीं मिलने वाला, अगर योग नहीं भी किया, नहीं भी लगा नहीं, लेकिन उसके भी मार्क्स हैं। लेकिन जो हम कहेंगे कि हमारा सही रूप में जमा होना चाहिए, वो जब हमारा पावरफुल योग होगा, अमृत वेला होगा, तब तो बाबा से वो सर्व संबंधों का अनुभव, जो भी हम करना चाहें, हमको इच्छा होती है बाबा से ये संबंध की मुझे अनुभूति होनी चाहिए, अमृत वेले का समय ऐसा है कि जो आप इच्छा रखेंगे बाबा से, वो बाबा खुद ही आपको अनुभव कराएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एक शुद्ध संकल्प हमें करना है बस, और फिर देखो बाबा आपको कैसे अनुभव कराते हैं। फिर बाबा कहते हैं अमृत वेले हमें अपना वरदानी रूप इमर्ज करना है। जब हमने स्वयं को भरपूर कर लिया बाबा की याद से, तो हम मनसा सेवा भी करें, विश्व कल्याणकारी बनकर के, बाबा के साथ कंबाइंड होकर के हम पूरे विश्व की आत्माओं को सकाश देने वाले हैं, शांति के प्रकंपन फैलाने वाले हैं, शक्ति का दान देने वाले हैं, आत्माओं को जो चाहिए, विश्व की आत्माओं को जो आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को हम बाबा से स्वयं लेकर के उनको पूरा करने वाले हैं। लेकिन होता क्या है, खुद की ही फरियाद होती है, जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बच्चे अधिकारी रूप में आते हैं, कुछ मांगने के रूप में भी आते हैं, कुछ शिकायतें लेकर के आते हैं, कुछ उलहना लेकर के आते हैं बाबा के पास। हाँ, और बाबा से क्या अपेक्षा करते हैं, बाबा आप तो रहम दिल हो, आप तो सर्वशक्तिवान हो ना, आप तो वरदानी हो, आपके लिए क्या मुश्किल है, आप तो ये सब कुछ कर सकते हो। हाँ, तो क्या कर रहे हैं हम, बाबा को याद दिला रहे हैं कि बाबा आपको करना चाहिए, आप मेरे लिए ये करो। तो हम खुद ही जब फरियाद में हैं, खुद ही बाबा से मांग रहे हैं, तो फिर विश्व की आत्माओं को दाता बनकर दे सकेंगे। देने में ही लेना समाया हुआ है, बाबा ने हमें ये गति बताई है। अगर हम स्वयं दे रहे हैं तो पहले वो प्राप्ति हमें होती ही है। तो इसीलिए इस रूप में भले हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन बाबा से मांगने वाले रूप में नहीं, लेकिन वो बाबा हमारे लिए दोस्त है, या हम कहेंगे कि वो हमारे लिए एक सखा के रूप में है, वो हमने अपनी बात कही, बाबा के साथ अपनी परेशानी बताई, या जो भी मुश्किल है वो हमने बाबा को बताई, वो हम कह सकते हैं। और फिर बाबा से हम तिलक लें, विजय का तिलक अपने माथे पर लगवाएं कि बाबा रोज मुझे सफलता का वरदान दे रहे हैं, बाबा मेरे सिर पर हाथ रख रहे हैं, एक छत्र छाया के रूप में बाबा सदा मेरे साथ होंगे, माना इसको हमें देखना है। जो भी अविनाशी स्मृतियों के तिलक बाबा ने हमें दिए हैं, जैसे बाबा कहते हैं आत्मिक स्मृति का तिलक होना चाहिए, ड्रामा की स्मृति का तिलक होना चाहिए, और बाबा से हम सर्वशक्तिवान स्वरूप का तिलक, विजय का तिलक जो है, वो हम जो भी चाहते हैं, जो हमें लगता है कि हमारे दिन भर की आवश्यकता होती है, वो हम उस समय बाबा से स्वयं में भर लें। फिर कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा कि अमृत वेले आप एक ही स्थान पर नहीं लेकिन मन से सैर करो। शरीर से तो एक स्थान पर बैठेंगे लेकिन मन से तो सैर कर सकते हैं ना। तो हमको दिव्य बुद्धि की लिफ्ट दी है बाबा ने। दिव्य बुद्धि की लिफ्ट से हम तीनों लोकों की सैर कर सकते हैं। जब चाहे हम परमधाम में चले जाएं, जब चाहे हम सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के फरिश्ता है बाबा, तो बाबा के फरिश्ते स्वरूप में बाप दादा से हम मिलन बनाएं। वो तो जैसे कि एक साकार में हम मिलन बनाते हैं, इस तरह का अनुभव हम कर सकते हैं। या हम मधुबन में आकर के योग करें अमृत वेले, यहाँ पर हम अनुभव करते हैं ना। चाहे हम अपना चार धाम में जाते हैं बाबा के कमरे में बैठकर, या शांति स्तंभ में, हिस्ट्री हॉल में बैठकर, तो अमृत वेले हम मधुबन आ जाएं। मधुबन का जो स्थान हमें अच्छा लगता है, तो मन से तो कहीं भी बैठ सकते हैं ना, तो यहाँ हम आ जाएं। सतयुग में जाएं हम, बाबा हमें कहता है अपने पांचों स्वरूपों का अभ्यास करो। तो मेरे परम धाम में जो पावरफुल स्थिति है, बीज रूप स्थिति, वो तो सबसे शक्तिशाली स्थिति है। लेकिन फिर उसके साथ साथ हम अपने भविष्य स्वरूप का भी साक्षात्कार करें। हम देवी देवता बनने वाले हैं, तो देवी देवता रूप में मैं कैसे सर्वगुण संपन्न हूँ, डबल ताजधारी हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ, 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ, वो अपना स्वरूप देखो। फिर अपने पूज्य स्वरूप को देखो, द्वापर युग में कैसे भक्त मेरी पूजा कर रहे हैं और बाबा कैसे मेरे द्वारा भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। हो सकता है, नहीं हो सकता? तो अगर हम इस तरह से अमृत वेले अपना चिंतन चलाएंगे, तो नींद कहाँ उड़ जाएगी हमें भी पता नहीं चलेगा। और इतना पावरफुल बाबा से हम प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, ऐसे लगेगा कि हम सर्व भाग्य बाबा से प्राप्त कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि आप अपने तकदीर की लकीर को जितना लंबा खींचना चाहो, वो अमृत वेले खींच सकते हो। तो ये जो भी विघ्न आते हैं हमारे, जो भी सुबह सुबह उठ करके, अगर जैसे मैंने कहा कि कोई समस्याएं हैं हमारी, वही मन में चलनी शुरू हो गई, किसी ने मुझे कुछ कहा वही मेरे मन में चलना शुरू हो गया, तो इसका मतलब हम अपनी पूरी दिनचर्या में सावधान नहीं है। उसका प्रभाव हमारे अमृत वेले पर आ जाता है कि जो चिंतन हमारा चलना चाहिए उसकी बजाय हम नेगेटिव चिंतन में जा रहे हैं या व्यर्थ चिंतन में जा रहे हैं, और योग लगाना चाहते हैं तो भी योग हमारा लग नहीं रहा। पावरफुल तो छोड़ो, योगी नहीं लग रहा है। तो इतना जो है वो फिर बोझ महसूस करते हैं, कई बार सिर दर्द हो जाता है, बैठे बैठे सिर भारी हो जाता है। हाँ, फिर सोचते हैं इससे तो अच्छा है सो जाओ। तो अगर इस तरह से अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो हमारा अमृत वेले पर उसका प्रभाव आता है। तो सारे दिन भी बाबा कहता है कि हमारा ज्ञान का मनन चिंतन पर ध्यान हो। मुरली हम सुनते हैं, लेकिन मुरली सुनने के बाद अगर हमने उस मुरली को चिंतन में नहीं लाया, अगर हमने उसको रिवाइज नहीं किया, चलो कई बार हमें याद नहीं रहती तो हम रिवाइज तो कर सकते हैं ना, लेकिन हम रिवाइज भी नहीं करते हैं, फिर सारा दिन दुनियादारी की बातों में ही बुद्धि लगी हुई है, तो इसकी उसकी बातों में ही बुद्धि होती है। फिर रात को हमने भोजन कैसा किया उसका भी प्रभाव होता है। अगर भारी भोजन करके सोए, रात को हमें जो भोजन करना चाहिए वो हल्का होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। जिनको भी अमृत वेले पावरफुल अनुभव करने का लक्ष्य है, उन्हें अपने रात के भोजन पर भी अटेंशन देना है कि रात को जो हमारे लिए हल्का है, तला हुआ, अधिक मिर्ची वाला भारी भोजन, ये हम अवॉइड करें। अगर कोई ऐसा अवसर भी है, मानो ब्रह्मा भोजन वगैरह भी, हम ज्यादातर वो तो दिन के समय ही होता है और कभी कभी होता है, लेकिन बाकी तो हम अपना भोजन खुद ही तय करते हैं कि हमें क्या खाना है। आप लोग तो इतना शादियों वगैरह में नहीं जाते होंगे, क्योंकि शादियों में ही रात के समय पार्टियां होती हैं और वहां पार्टी में फिर लोग भारी भोजन कर लेते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बाबा के जो ब्राह्मण बच्चे हैं वो तो इन चीजों से दूर रहते हैं, और अगर जाते भी हैं तो फिर हम अपने हिसाब से जो हमारे लिए हमारी आवश्यकता है उतना ही हम वैसा ही लेते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना है। तो अगर इन बातों का हम अटेंशन रखते हैं तो निश्चित रूप से बाबा से जो वरदान हमें लेने चाहिए, जो शक्तियां हमें भरनी चाहिए, जो कमाई हमारी होनी चाहिए, जो इस संगम युग की एक सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति हमें बाबा ने दी हुई है, तो ये हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे और अपने पुरुषार्थ को हम उड़ती कला वाला बना लेंगे। ऐसा महसूस करेंगे कि वरदानों से चल रहे हैं और वरदानों से उड़ रहे हैं, जैसे कि बाबा ही हमें चला रहा है और उस लायक बना रहा है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। से बाबा कई बार पूछते हैं, अमृत वेले बाबा के प्यार में उठते हो या बाबा के प्यार में उठते हो या मजबूरी में उठते हो? हाँ, जो समझते हैं बाबा का प्यार हमें उठाता है, मेजोरिटी। हाँ, तो बाबा का प्यार हमें खींच कर, नहीं तो दुनिया वाले कितना मुश्किल समझते हैं। जैसे कहा ना, आज के लोग तो 8 बजे से पहले उठते नहीं है, तो उनको बोल दो 4 बजे उठना। हाँ, तो क्या लगता है? असंभव लगता है, असंभव। 4 बजे उठ के क्या करेंगे? लेकिन हमें पता है कि 4 बजे क्या मिलने वाला है, तो वो भगवान का प्यार हमें खींचकर उठा देता है और बिठा देता है। ओम शांति।